मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 29 मई 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं अनूप कुमार पांडे हापुड़ उत्तर प्रदेश से और श्रद्धा शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे यूरोपीय संसद के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, लेकिन आइए पहले थोड़ी दूसरी खबरों को देख लेते हैं क्योंकि जो दूसरी खबरें हैं आज वे भी पर्याप्त मात्रा में हैं। न्यूज में आपने कोलंबो बंदरगाह के पूर्वी टर्मिनल के बारे में सुना होगा अगर ध्यान दिया हो तो। मित्रों, वैसे तो बहुत से टर्मिनल बनते रहते हैं, बंदरगाह बनते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के तहत सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए यह न्यूज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं बहुत ही थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगा ताकि आप इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनको अपडेट कर सके। कोलंबो बंदरगाह यानी कि श्रीलंका, श्रीलंका यानी कि भारत का पड़ोसी देश और पड़ोसी देश होने के नाते भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण, राइट। तो जो कोलंबो बंदरगाह का जो पूर्वी टर्मिनल है उसके बारे में कल एक समझौता हुआ, उसको डेवलप करने के बारे में तीन लोग मिलकर के इसे डेवलप करेंगे, उसमें भारत है, जापान है और श्रीलंका है। ये तीन लोगों का एक तरह से कह लीजिए कि कंबाइंड पार्टनरशिप वाला वेंचर है। इसका 51% जो अधिकार है वो श्रीलंका के पास है और 49% में भारत और जापान है। देखिए 51 और 49 का क्या मतलब होता है, हालांकि 2% का ही फर्क है, अगर 1% उधर से श्रीलंका का इधर आ जाए तो 50-50 हो जाएगा, लेकिन ये एक नियम कानून है आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक सेक्शन का, कि जिसके पास भी आधे से अधिक शेयर होगा वह उसका मालिक होगा मोटे तौर पर कह लीजिए। चूंकि 51% श्रीलंका के पास है यानी कि जो पूर्वी टर्मिनल का विस्तार होगा उस पर जो अधिकार होगा मूलभूत अधिकार वह श्रीलंका का ही होगा, इससे यह सिद्ध होता है, राइट। अब देखिए कि भारत के लिए यह क्यों इंपॉर्टेंट है, बस दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ज्यादा अगर हम पॉइंट्स अपने दिमाग में लाते हैं तो इनफैक्ट सच पूछिए तो हम भटक जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि हमें 200-250 शब्दों में अपने उत्तर भी लिखने हैं तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें। दो पॉइंट है, पहला तो यह है कि भारत का जो समुद्री व्यापार है वो 70% व्यापार, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा इस कोलंबो बंदरगाह के थ्रू होता है। देखिए भारत का सबसे ज्यादा व्यापार हिंद महासागर से होता है, आप जानते हैं, और हिंद महासागर में वही आपके श्रीलंका है, तो जहां 70% हमारा व्यापार हो रहा है वहां कोलंबो बंदरगाह पर हमारी इस तरह से डेवलपमेंट में साझेदारी होना हमारे लिए बहुत सुकून की बात है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि श्रीलंका और इस पूरे क्षेत्र में चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ाता चला जा रहा है। सच पूछिए तो चीन के दबदबे से तो अब श्रीलंका थोड़ा सा परेशान भी हो गया है और खुद चीन बकायदे श्रीलंका में बंदरगाह विकसित कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक बंदरगाह भारत और जापान के संयुक्त उद्यम के तौर पर विकसित होना भारत के लिए बहुत सुकून की बात है, बहुत राहत की बात है, और इससे भारत श्रीलंका में जो चीन का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है उसको थोड़ा सा रोक सकेगा और इस पूरे क्षेत्र में भी चीन लगातार अपने प्रभुत्व को बढ़ाता चला जा रहा है उसका भी थोड़ा सा संतुलन आप कह लीजिए कि हो सकेगा। तो इस दृष्टि से यह खबर महत्वपूर्ण है। मित्रों, अब न्यूज उस तरह से तो नहीं है लेकिन जो न्यूज पेपर है डेफिनेटली उसकी कुछ बातों की मैं आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा। न्यूज़पेपर में एक खबर है यूरोपीय संसद की जिसे मैं आज मुख्य विषय के रूप में आपसे बात करने जा रहा हूं। दो तीन एडिटोरियल कमेंट हैं उनको आधार बनाकर के मैं आपके ध्यान में ये खबरें लाना चाहूंगा क्योंकि सामान्यतः जो स्टूडेंट हैं वो इनके महत्व को नहीं समझ पाते और चूंकि चर्चा में ये चीजें बहुत नहीं आती हैं तो ऐसा हो पाना उनके लिए कह लीजिए कि बहुत स्वाभाविक भी है। एक है मित्रों की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और दूसरा है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। ये दो ऑफिसेज हैं, सरकार अब इन दोनों का विलय करके एक करने जा रही है। सरकार ने इस बात की घोषणा की है, देखिए कब होते हैं। और इस नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ नया राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जैसा कुछ होगा। अभी तक ये जो संगठन थे ये एक कह लीजिए कि प्रोफेशनल व्यक्ति होते थे, वो इसके हेड होते थे, मतलब सांख्यिकी के जानकार होते थे। अब जो है इसके जो हेड होंगे, जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसके सचिव ही इसके हेड होंगे। सरकार का ये कहना है कि जनरली ये जो दो अलग अलग ऑफिसेज हैं तो इससे ओवरलैपिंग हो जाती है, बेवजह का खर्च भी होता है, बेहतर होगा कि इन दोनों का विलय कर दिया जाए तो बहुत अच्छे से तालमेल हो सकेगा। आपको मालूम है कि इस बीच में कुछ आंकड़ों को लेकर के विवाद की स्थिति बनी थी। विवाद ये था कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रही है, फिर रोजगार के जो आंकड़े हैं वो क्यों नहीं लाए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के सांख्यिकी विभाग के कुछ अधिकारियों ने रिजाइन भी कर दिया था और इस पर खूब बहस हुई थी। खैर, इस पृष्ठभूमि में आप कह सकते हैं कि अब इन दोनों का विलय किया जा रहा है। अब देखिए कि विलय होने के बाद क्या स्थिति होती है। लेकिन जो विलय की बात है, इनफैक्ट सच पूछे तो प्रशासनिक सुधार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको आज एक बिजनेस स्टैंडर्ड का लेख प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें मंत्रालयों के विलय की बात कही गई है। हमारे बहुत से मंत्रालय हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे सरकारी खर्च में कटौती की जाए। और देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछे जाने की संभावनाएं भी होती हैं। तो जब आप कटौती करने की बात सोचेंगे तो बहुत जरूरी है कि जो मंत्रालय हैं या दो तीन चार को मिलाकर के एक कर सकते हैं तो उन्हें एक कर दीजिए। तो जहां चार मंत्री की जरूरत है वहां एक या दो मंत्री से बात बन जाएगी, जहां चार सेक्रेटरी की जरूरत है तो एक सेक्रेटरी से बात बन जाएगी, और जो दूसरे मंत्रालय हैं जिनका आप विलय कर रहे हैं उनको आप विभाग बना दीजिए। तो इस तरीके से सरकारी खर्च में भी बहुत कटौती हो जाएगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर एक ही नेचर के मंत्रालय हैं तो कम से कम इंटीग्रेटेड तरीके से निर्णय लिया जा सकेगा, इंटीग्रेटेड तरीके से, सामूहिक रूप से। उदाहरण के तौर पर चलिए अगर हम ट्रांसपोर्ट के एरिया को लें तो देखिए हमारा रेलवे मंत्रालय अलग है, जहाजरानी मंत्रालय अलग है, नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अलग है और सड़क परिवहन अलग है। अब देखिए कि ये सब के सब ट्रांसपोर्ट से ही जुड़े हुए हैं लेकिन सब अपने अपने ढंग से निर्णय ले रहे हैं। तो अगर इन चारों को मिला दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पर बड़े इंटीग्रेटेड तरीके से डिसीजन लिए जा सकेंगे। और ऐसे हमारे यहां बहुत से मंत्रालय हैं। कुछ और मंत्रालय के मैं आपको नाम बता देता हूं ताकि कुछ तथ्य आपको मिल जाए। जैसे एक उद्योग मंत्रालय है, फिर भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय है पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए, फिर एक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों वाले उद्योग के लिए अलग मंत्रालय है, फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अलग मंत्रालय है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है, कपड़ा के लिए का मंत्रालय है, इस्पात का मंत्रालय है। तो अब आप देखिए कि ये सब उद्योग से ही जुड़े हुए मंत्रालय हैं। तो इसमें क्या है कि आप इसे एक मेन मंत्रालय बना दीजिए और जो मैंने अभी मंत्रालय के अलग अलग नाम लिए हैं इनके आप विभाग बना दीजिए। और हमारा जो एचआरडी मिनिस्ट्री है आप देखिए इसी पैटर्न पर काम कर रही है। एचआरडी मिनिस्ट्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक है और उसके तहत फिर विभाग बनाए हुए हैं, शिक्षा का अलग है, संस्कृति का अलग है, खेल का अलग है, इस तरीके से इन्हें भी किया जा सकता है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि जो मैंने अभी मंत्रालयों के समूह बताए हैं इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। क्या होगा कि यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने की स्थिति में आ जाएंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है यूरोपीय संसद। थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको परिचयात्मक जानकारी ही देना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि उतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। यूरोपीय संघ के नाम से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, जिसे हम इंग्लिश में यूरोपियन यूनियन कहते हैं। इनफैक्ट ये जो यूरोपियन यूनियन है इसकी जो नींव कह लीजिए कि 1957 में एक रोम की संधि हुई थी उसमें यूरोपीय आर्थिक परिषद का निर्माण किया गया था, बनाया गया था, जिसमें 6 देश थे। तो बाद में धीरे धीरे और भी देश इसमें शामिल होते चले गए और अब लगभग 28 देश इसके सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन का नाम आपने ब्रेग्जिट के संदर्भ में भी सुना होगा कि किस तरह से ब्रिटेन में लगातार कोशिश हो रही है कि ब्रेग्जिट से अलग हुआ जाए और वहां अभी जो राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ है वो ब्रेग्जिट को लेकर के ही है। उसकी बात यहां करना हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो अब हुआ यह है कि जो यूरोप के देश हैं, जो 28 देश, इन्होंने एक तरह से यूं कह लीजिए समझने के लिए कि मिलकर के एक देश बना लिया है। जैसे राज्य मिलकर के एक राष्ट्र बना लें, तो इन लोगों ने मिलकर के एक यूरोपियन संघ बना लिया है और उसकी अपनी एक संसद है, बकायदे यूरोपीय संघ की एक संसद है और उस संसद के बकायदे चुनाव होते हैं, 5 साल के लिए चुनाव होते हैं और जिन देशों की जितनी आबादी है उसके अनुपात में ही उन्हें संसद में सीटें दी गई हैं। तो अभी इसके लिए लगभग लगभग जो इसकी टोटल सीट है वो 751 के आसपास इसकी सीट्स टोटल हैं, उसके लिए अभी चुनाव हुए। दोस्तों अभी जो चुनाव हुए उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका इस्तेमाल आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं कि इस चुनाव में जो सफलता मिली है वो या तो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले पार्टियां हैं या पर्यावरण समर्थक पार्टियां हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इनको बहुमत मिल गया, लेकिन ये बहुत तेजी से फैली हैं। अब ये जो पर्यावरण वाली पार्टी को जो इतना समर्थन मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यूरोपीय देशों के लिए पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, राइट। तो इसका फैलाव डेफिनेटली पूरी दुनिया में धीरे धीरे इस तरह के जो संदेश होते हैं वो होता चला जाता है। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, एक दो बातें, कि ये जो यूरोपीय संसद है जब इसके कोई यूरोपीय राष्ट्र सदस्य बन जाते हैं तो बेसिकली उन्हें फिर कुछ बातों के लिए अपने आप कह लीजिए अपनी स्वतंत्रता को या अपनी इच्छा को समर्पित करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं तो वहां के जो लोग हैं पूरे के पूरे देशों में आसानी से आ जा सकेंगे, वहां जाकर के रह सकेंगे, सामान का की भी जो आवाजाही है, जो सर्विसेज की आवाजाही है, जो कैपिटल की आवाजाही है वो बड़े आराम से आसानी के साथ एक दूसरे देश को हो सकेगा। उसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और यहां तक कि उसमें से जो यूरोपीय संघ के ज्यादातर देश हैं उन्होंने एक संधि की थी और उस संधि के तहत ये बात मान ली गई है कि अगर आपने एक बार पासपोर्ट बनवा लिया तो फिर वह पासपोर्ट लेकर के आप यूरोप के अधिकांश देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस संधि को कहा जाता है स्लेगन संधि, तो स्लेगन पासपोर्ट भी कहते हैं। हाँ, जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन के लिए आपको अलग से ही वीजा लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप स्लेगन वीजा ले लेते हैं तो फिर पूरे देश में आप घूम सकते हैं। देखिए वीजा और पासपोर्ट में आप थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। जो पासपोर्ट होता है वो हर देश इशू करता है, जैसे मैं भारत से कहीं बाहर जाना चाह रहा हूं तो भारत मुझे पासपोर्ट देगी, ठीक है, और जिस देश में मैं जाना चाह रहा हूं वह देश मुझे अपने यहां आने देने देना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है तो वह मुझे वीजा जारी करेगा, राइट। तो पासपोर्ट और वीजा, तो जो श्लेगन संधि के तहत अगर आप कोई वीजा ले लेते हैं तो फिर इन देशों में आप बड़े आराम से आ जा सकते हैं। तो मित्रों ये थोड़ी सी जानकारी थी यूरोपीय संसद के बारे में। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जो फैजान मुस्तफा साहब का है माइनॉरिटी के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से पढ़ें, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है और इंग्लिश में है। हिंदी के स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हिंदी में इसका अनुवाद उन्हें उपलब्ध करा दूं। और दूसरे पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप सब देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद देता हूं और आप में से ही कुछ मित्रों के नाम हैं, विकास गुप्ता शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, रिंकू शर्मा जयपुर से, अजय अहिरवार गंज बसौदा मध्य प्रदेश से, समर शुक्ला जौनपुर उत्तर प्रदेश से और योगेंद्र प्रताप मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।